вам Бах сказал, что ты очень умная женщина.
Ла.
Почему ты думаешь, что была?
Потому что я здесь.
Почему ты выбрала нас?
Это не я решила. Судьба преподнесла мне такое несчастье.
Нам нужен список тех людей, которые могут остановить убийство. И еще, если ты узнаешь, где, как они работают, ты получишь больше денег.
Хотите убить их?
Мы никого не убиваем, запомни это. И еще, пока ты работаешь с нами, никогда не говори слово «убивать».
Тогда зачем вам этот список?
Ты получишь свои деньги. Остальное твое дело.
Когда ты вернешься в Тегеран, в течение месяца ты должна развестись с Равен Бахшой по какой-либо причине.
Разве здесь?
Да. Ты правильно услышал.
Зачем?
Он женился на тебе, чтобы создать связь между нами. Ну, а теперь, когда ты уже член нашего клуба, для вас обоих плохо будет быть вместе.
अच्छा क्या हुआ देखो आज के बाद हम दोनों एक साथ काम करें बिल्कुल इस प्रोग्राम के तहत जो मैं तुमको दूँ
ठीक है ओके
जब भी तुम्हें लगे कि काम पसंद नहीं आ रहा है इससे बाहर निकलना चाहते हो तो कोई मुश्किल नहीं है कोई प्रॉब्लम बस एक दिन पहले मुझे बता देना इस बारे में
मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मलिक साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे क्या समझते हैं आप ये समझते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकूंगा मैं दोस्ती के मामले में बहुत उसूली आदमी हूँ
हम दोस्त तो नहीं हैं बस काम कर रहे हैं साथ में
यही खाना जो हमने एक साथ बैठकर खाया यही काफ़ी है मेरे नज़दीक दोस्ती की कीमत बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा
तुमने क्यों मेरे अबू को मुझसे छीन लिया मेरी माँ को बीमार क्यों कर दिया क्यों तुम बहुत बुरी औरत हो बहुत ज़्यादा बुरी मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ ना करे खुदा करे जो मुसीबत मेरी माँ पे नाजिल हुई वो तुम पे नाजिल हो जाए
मीलाद मीलाद
वाह भाई वाह पुराना दोस्त मेरी याद आ रही थी
सुनिए इस वक्त मैं बहुत जल्दी में एक बात कहना चाहता हूँ वक्त नहीं है देखिए इस वक्त हम लोग बाकरी में एक बड़ी सड़क पर बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर की पार्किंग के अंदर हम पहुँच चुके
अच्छा?
हैं हाँ हाँ बिल्कुल शाबाश
हम अंदर आ गए हैं फिर यहाँ थोड़ी देर तक रुके बहुत पुराने मॉडल की एक अमरीकी गाड़ी भी यहाँ पर है गहरे नीले रंग की गाड़ी है
हाँ हाँ तेहरान में बस यही एक गाड़ी है आप इसे जैसे ही देखेंगे फौरन पहचान लेंगे हम अंदर आए तो रोया गाड़ी से उतर गई उस गाड़ी के अंदर तीन लोग बैठे हुए हैं वो भी जाकर गाड़ी में बैठ गई अब वो लोग बात कर रहे हैं वो जाकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई एक मोटे से आदमी के पास
क्या हाँ वो कोई चीज उस मर्द को दे रही है नहीं समझ पाया कि क्या है हाँ उस आदमी को दी उसने
हाँ आ गई देखिए मुझे अब जाना होगा फौरन जाना होगा खुदा हाफिज
चलो
ये बताओ, काम खत्म हो जाने के बाद तुम लोग सफर के लिए कहाँ जाओगे?
हमने इस बारे में बात की, मैं सोच रही थी कि जो जगह मुझे पसंद है शायद उसे पसंद ना हो, लेकिन मुझे पता चला कि उसे भी वो जगह पसंद है।
वैसे अच्छा हुआ कि अतिया ने इस बारे में आपसे बात कर ली, इसलिए कि मैं खुद ही इस बारे में आपसे मशवरा करना चाहता था। आपके पास वक्त है? अतिया बहुत चाहती है कि ये सारा माजरा खत्म होने के बाद हम लोग आबादान, खुर्रमशहर या आवाज जाएं। मैं खुद भी इस वक्त ऐसे ड्रामे पर काम कर रहा हूँ जो जंगी इलाके से मरबूत है, जंग का आखिरी दिन।
तहकीक भी है, तफरी भी है, अच्छा है ना अबू?
हाँ, इसमें क्या बुराई हो सकती है? तुम लोगों की तफरी हो जाएगी, सियाश की तहकीक हो जाएगी, एक साथ दो दो काम हो जाएंगे, इससे बेहतर क्या?
बहुत ज़बरदस्त, मेरा दिल चाहता है कि आपसे मदद हासिल करूँ। आप महाज़ जंग पर जा चुके हैं, शिकस्त फतह को आपने नज़दीक से देखा है, स्क्रिप्ट में मदद कीजिए मेरी।
तुम अपनी स्क्रिप्ट का मौजू बता सकते हो?
जी हाँ, जी हाँ।
माफ करना, बस एक मिनट। हेलो सादिक, क्या समझे तुम?
गाड़ी चोरी की थी, उसे तजरीश से चुराया गया था, सादिक शॉपिंग सेंटर में कैमरों को चेक कर रहे।
हामिद ने और क्या बताया?
वो दोनों बुटीक की तरफ गए ही नहीं, वो तो कहीं और गए हैं इस वक्त रास्ते में।
ठीक है, जल्दी करो, देर ना करो।
बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। तुम्हारा क्या ख्याल है नासिर?
मुझे लगता है कि इस नीली गाड़ी में जो लोग थे वो दहशतगर्द थे। वहाँ रोया ने जाकर इन तीनों से बात की और कोई चीज़ एक दूसरे को उन्होंने दी है। मेरे ख्याल में उस घर की चाबी होगी जहाँ अब आइंदा ये लोग जाएंगे और कुछ दिन वहाँ रहेंगे। मुमकिन है उसे इस घर का एड्रेस मालूम।
यह भी मुमकिन है कि ना जानती हो, जैसे इससे पहले कई बार हुआ कि दो पत्थरों के बीच से चाबी उठाई हो, है ना?
लेकिन ज़्यादा इम्कान है उसे पता होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर हम रोया को अभी गिरफ्तार कर लें तो इन तीनों को पकड़ लेंगे।
देखो नासिर, अगर उससे मालूम ना हुआ तो प्रोग्राम जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है मुश्किल में पड़ जाएगा।
हाँ ये तो है, इस बात का भी इम्कान है। लेकिन अगर मुझे अकेले इस बारे में फैसला करना होता तो यकीन रखो मैं शक में ना पड़ता, इसी वक्त रोया को गिरफ्तार करता और तीनों को पकड़ लेता।
क्या हाशिम हमारे साथ तावन नहीं कर रहा है?
हाँ, लेकिन वो एक सीधा साधा आदमी है, उसकी सारी फिक्र यह है कि उसकी शादी की पेशकश रोया कबूल कर ले और बाद में उसे धोखा ना दे दे, ये चीज़ मुझे परेशान कर रही। मुस्तफ़ा,
तुम्हें क्या लगता है सीधा आदमी ने, आशिक ने हमसे अपने राबते की बात रोया को अब तक नहीं बताई होगी? बोलो।
नहीं, अभी तो नहीं बताई।
तुम्हें यकीन है?
हाँ यकीन है, तभी तो कह रहा हूँ।
इस यकीन की वजह क्या है?
पहली चीज़ तो यह है कि यह हाशिम पुराने मोहल्ले के रहने वाले उन लोगों में से है जो वफादार रहते हैं, उन लोगों में से है जो वादा करते हैं तो पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर रोया को अंदाज़ा होता, यानी कि यकीन होता कि ऐसा कुछ हुआ है, तो कोई ना कोई रद्दअमल ज़रूर दिखाती। इसका मतलब यह है कि हाशिम ने रोया कुछ नहीं बताया है।
क्या कहते हो, क्या मैं हकानी से बात करूं?
नहीं पता, तुम्हारी अपनी राय क्या है?
देखो अब तक हम कामयाबी से आगे बढ़े हैं, है ना? अब आइंदा भी अगर हमने कोई गलती और कोताही ना की तो वाकई हमारे सामने जो अहदाफ हैं पूरे हो जाएंगे।
तो फिर ठीक है, तो क्या ज़रूरत है हकानी से बात करने की?
नासिर, मैं तुम्हारी कैफियत बखूबी समझता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो इस वक्त मेरा भी मशवरा यही होता।
एक बात सुनो, मैंने अब तक जो भी कदम उठाया है उसमें जज्बात को गालिब नहीं आने दिया है, सोच समझ कर फैसला किया है, समझे?
ठीक है, तो फिर मैं हक्कानी से बात करने जा रहा हूँ।
अब कहाँ जाऊँ?
कहाँ जाएं? क्या इरादा है, सुबह तक यूं चक्कर लगाने क्या सड़कों पर?
ठीक है, बिल्कुल ठीक।
पहले हम लोग बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएंगे, उसके बाद लौटेंगे नीचे, बिल्कुल नीचे वाले महल की तरफ। बिल्कुल नीचे।
बिल्कुल नीचे वाले मोहल्लों का तो मुझे पता है, लेकिन ऊपर वाले इलाकों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं।
ठीक है, तुम बस आगे बढ़ते रहो, मैं तुमको बताती रहूंगी।
ठीक है, मैं सीधा ही चलूं?
हाँ, तुम इसी तरह सीधे चलते रहो।
क्या स्पीड बढ़ाऊं?
गाड़ी तेज चलाओ, देखो कितना तेज चला सकते हो। हाशिम, वो दुनिया नाम का जो गाना था ना, तुम गाते थे, उसके अलावा भी कोई और गाना आता है?
हाँ बिल्कुल, गा तो सकता हूँ, लेकिन डर लगता है मैं गाऊँ और तुम दोबारा रोना शुरू कर दो।
डरो मत, मैं नहीं रोऊंगी, तुम गाओ, कोई बात नहीं।
दुनिया में आशिक तन्हा रह जाता है, ये बात मेरा बेचारा दिल भी जानता है, इसलिए मैं नहीं कहता कि मेरा इश्क हराम है, कैसे कहूँ जबकि जानता हूँ कि तुम्हारा दिल भी दुखी है, चाहो या ना चाहो यही है जिंदगी का कारोबार, आशिक के लिए खुशी के सिवा।
शीशे नीचे करो।
ये क्या कह रहा है?
लड़कियों ने हमें छोड़ दिया है, अब हम क्या करें?
जाकर कहीं खुदकुशी कर लो।
उसको क्यों खत्म करें? तुमको खत्म करेंगे।
तुम कुछ करने के काबिल नहीं हो और मुझे धमकियां दे रहे हो।
तुझे
बताता हूँ।
छोड़ो हाशिम, जाने दो, छोड़ो, जाने दो हाशिम।
अरे जाओ, मुझसे लड़ोगे?
अरे छोड़ो उसे, दफा हो जाओ, भागो यहाँ से, दफा हो जाओ, तुम सब के सब दफा हो, भागो यहाँ से, जाके अपनी गाड़ी में मरो। हाशिम, तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम ये क्या कर रहे हो अपने साथ? चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, उठो उठो।
तुम्हारे सामने सब गड़बड़ कर दी मैंने, शर्मिंदा हूँ। असल में वो लोग तीन आदमी थे, उनमें से एक जो है वो बहुत ही ताकतवर था, उनमें से एक मेरे ऊपर गिर पड़ा था और मुझे हिलने भी नहीं दे रहा था।
जरा देखो तो तुम्हें, डॉक्टर के पास चलते हैं।
नहीं नहीं, बस मेरी नाक जख्मी हो गई, ज्यादा नहीं लगी है। इस तरह के चोटें मेरी नाक बहुत बर्दाश्त कर चुकी है, अलबत्ता हमेशा पहले मैं मारता था फिर पीटता था, अब बरक्स हो गया।
हो सकता है कि तुम्हारी नाक की हड्डी टूट गई हो।
नहीं नहीं, टूटी नहीं है, खास बात नहीं है, बस जरा पानी की जरूरत है, अपना चेहरा धुलूं कि तुम मुझे इस तरह घूर कर ना देखो और ये सब साफ हो जाए।
पीछे वाली सीट पर एक मिनरल वाटर की बॉटल रखी हुई है, उसे उठा लो।
कहाँ है? हाँ हाँ, ये
मैं अभी पुल के बाद गाड़ी रोकती हूँ, तुम हाथ मुंह धो लो।
ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हाथ में जो पिस्टल थी, क्या उन लोगों ने तुम्हें दी थी?
हाँ।
किस लिए दी थी?
हम दोनों की हिफाजत के लिए।
हिफाजत के लिए?
क्रिमिनल लोगों से हिफाजत। हाँ
अच्छा, हाँ सही कह रही हो, मैं तो भूल ही गया था कि उस गुंडे के कुछ आदमी भी हैं। क्या तुमको ये चलानी आती है?
हाँ, मैं उसे इस्तेमाल करना जानती हूँ।
हाँ वैसे जब तुमने उन बदमाशों की तरफ वो पिस्टल तान ली थी तो मैं बहुत डर गया था।
उतरोगे नहीं? क्या तुम्हें चेहरा नहीं धोना?
हाँ हाँ क्यों नहीं,
गाड़ी से नीचे उतरो ना।
हाँ अच्छा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आपने इस वक्त फ़ोन किया, क्या टाइम हो रहा है?
वालेकुम सलाम बेटा, ठीक हो? बेटा नमाज का वक्त हो गया, फ़ोन किया कि तुमको जगा दूँ। तुम कहाँ हो, तुम्हें नमाज के वक्त का अंदाज़ा नहीं?
मैं तो सड़क पे खड़ा हूँ।
सड़क पर हो, रात किस वक्त? देखा बेटा, नमाज में देर ना करना।
नहीं अम्मी जान, अभी पढ़ता हूँ।
आज शाम का काम तुम भूलना नहीं, मैंने शाम 5 बजे का वक्त तय किया है। वो लोग शहरान में रहते हैं, पहले तुम मेरे पास चले आना, मैं तैयार मिलूंगी।
मैं ठीक 4 बजे घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है?
ठीक है बेटा, लेकिन फोन करके कैंसिल नहीं कर देना और मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़े।
नहीं अम्मी जान, आप मुतमईन रहिए, अगर कोई ज़रूरी काम भी हुआ तो उसको किसी और के हवाले कर दूंगा।
ठीक है बेटा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी और नमाज में देर नहीं करना।
जी अभी पढ़ लूंगा, आप मुतमईन रहिए। और कुछ काम तो नहीं?
नहीं बेटा, तुम अपना ख्याल रखो।
हाँ मुस्तफा, बताओ क्या हुआ?
हक्कानी कहा कि इस मामले में जो भी फैसला करना है हमें खुद ही करना है। अब बताओ क्या किया जाए।
देखो मैं कई घंटे से इस बारे में सोच रहा था, अभी थोड़ा इंतजार करेंगे।
रोया, रो क्यों रही हो?
जरा इसको पढ़ो। ऊंची आवाज से पढ़ो।
ये खत जब तुम पढ़ रही होगी उस वक्त मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। मैडम शाबानी ने, जो हमारी पड़ोसी हैं, वादा किया है कि इस खत को मेरे मर जाने के बाद तुम तक पहुंचा देंगी। मेरी बच्ची मुनीर, मैंने 25 साल इज्जत और आबरू के साथ मेहनत से अपना काम किया। 25 साल तक मेरे साथ काम करने वाले लोग मेरा एहतराम करते थे, लेकिन तुमने 25 साल की मेरी इज्जत और आबरू एक लम्हे में नाबूद करके रख दी। जिस दिन से तुम उस नशेई लड़के के चक्कर में पड़कर घर से और हमारे इस छोटे से शहर से भागी, उस दिन से मैं और तुम्हारी माँ दोनों जब भी घर से बाहर निकलते थे हमेशा मजबूर रहते थे कि अपना सर झुकाए जल्दी से गुजर जाएं, ताकि लोगों की तहकीरामेज निगाहों का सामना हमें ना करना पड़े। घर से भागने वाली मेरी बेटी, मैं नहीं जानता कि इस वक्त तुम कहां हो और क्या कर रही हो। बस हमें इतना पता है कि अपने से बड़ी उम्र के किसी आदमी से तुमने शादी कर ली और फिर कुछ दिन के बाद तलाक हो गई। हमें यह पता चला कि तुम किसी और मुल्क चली गई हो, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि उस मुल्क में जाकर तुमको क्या हासिल हुआ। मुनीर, मैं ये खत बिस्तरे मर्ग से तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं कभी बिस्तर से उठ पाऊंगा। मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि तुमने हमारे हक में जितनी भी बुराइयां की हैं उन सब के बावजूद एक बार तुमको देख लूं। तुम्हारी अम्मी जानती है कि मैं तुमको कितना चाहता था। तुम्हारी माँ गवाह है कि तुम्हारे भाग जाने के बाद अक्सर रातों को मैं जाग कर रोता रहता था। मैं सख्ती करने वाला बाप नहीं था। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं की। मुझे नहीं मालूम कि मैंने अपनी जिंदगी में कहां और कौन सी गलती की है कि जिसका खमियाजा मैं भुगत रहा हूं। मुनीर, मैंने तुमको यह खत इसलिए लिखा है कि तुम ये ना सोचो कि तुम्हारा बाप तुमसे मुतनफिर है। यह खत इसलिए लिखा है कि तुमको पता चले कि तुम्हारा बाप बीमारी के बिस्तर पर भी तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। तुमने जो गुनाह भी किया है, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, शरीफ इंसानों जैसी जिंदगी गुजारो, ताकि मेरे मर जाने के बाद तुम दोबारा अपनी माँ के पास लौट जाओ। मेरी बेटी, ये आखिरी जुमले अब मुझसे नहीं लिखे जा रहे हैं, आंसू रुक नहीं रहे हैं। अब तुम अपने इस बूढ़े और बीमार बाप को कभी नहीं देख पाओगी। भूल ना जाना, कभी कभी अपने उस बाप को जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था याद कर लिया करना। मैं तुम्हारे बारे में सोचते हुए आखिरी सांस लूं। खुदा हाफिज मेरी बेटी। तुमने कितने साल पहले घर छोड़ा था?
6 साल।
इतने साल में कभी भी तुम्हें अपने अम्मी अब्बू की याद नहीं आई?
याद आई।
तो फिर क्यों नहीं गई उन्हें मिलने के लिए?
जो काम मैंने किया था उसके बाद मुझे शर्म आती थी।
वही निशेई लड़का? उसी ने तुमको घर से भगाया, वही 22 बना? अब कहां है?
खतरनाक नशा करता था, मर गया। हाशिम जावेद, अब तो तुम्हें पता चल गया कि मैं एक छोटे से कस्बे की लड़की हूं। मेरा घर पौश इलाके में नहीं है, 6 साल से घर से भाग चुकी हूं। इससे पहले मेरा शौहर था, मुझे तलाक दे चुका है। क्या आप भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी बनूं?
अब तो और भी अच्छा हो गया। तुम्हें याद है अल्लाह मगफरत करे, मेरी अम्मी कहती थी कि कबूतर बा कबूतर, बास बा बास, कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज। अब ठीक हो गया है।
ठीक है तो अब मैं भी तैयार हूं हाशिम जावेद। फरमाइए।
मैं नाजनीन अमीरी हूँ, ना ही दमीरी की बहन।
आप जरा देर से पहुंची मैडम, मैं सुन तो चले गए हैं अस्पताल नाहिद से मिलने।
रवान बख्श अब अस्पताल अपनी बीवी से मिलने नहीं आता, बस वो एक दफा आया था, वो ही बहुत महंगा पड़ा।
उस दफा जब वो अस्पताल में आया तो जैसे ही मेरी बहन ने रवान
बख्श को देखा उसकी हालत खराब हो गई और उसने इतना शोर मचाया कि उसे कमरे से बाहर जाना पड़ा।
तो आप ये सारी बातें इस वक्त मुझे किस लिए बता रही हैं?
हम ये बातें करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम इसलिए आए हैं कि आपको लेकर अस्पताल जाए नाहिद के पास।
मुझे आप नाहिद के पास क्यों ले जाना चाहती हैं?
नाहिद ने खुद ही हमसे कहा है कि हम आपको उसके पास ले जाएं, वो आपसे कोई जरूरी बात करना चाहती है।
लेकिन इससे पहले जब मैं अस्पताल आई थी तो वो मुझसे कोई बात ही नहीं कर पाई।
बात तो वो अभी नहीं कर पा रही है, जो कहना होता है कागज के ऊपर लिख देती है।
हामिद, हामिद
बोलो,
क्या वो अब भी दुकान में?
उनका एक दोस्त आया, फिर वो तीनों एक साथ दुकान से बाहर आए और सड़क की तरफ गए, उसके बाद अब वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर गए।
रजिस्ट्रेशन ऑफिस? तुम्हें यकीन है?
हाँ भाई, इस वक्त मैं खुद भी ऑफिस के बाहर गाड़ी में हूँ, उसका बोर्ड यहाँ से नजर आ रहा है।
वहाँ किस लिए गए?
प्यारी दुल्हन मैडम मुनीर के लिए इसी तरह खूबसूरत और स्मार्ट दूल्हे जावेद के लिए, दोनों के लिए तालियां। दूल्हा मियां, जनाब हाशिम जावेद साहब, यहां आइए और रजिस्टर पर दस्तखत कीजिए।
जी जनाब, क्या करना है मुझे?
आपको निकाह की शर्तें मंजूर हैं?
क्यों नहीं जनाब, कबूल हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं?
तो फिर आओ यहां साइन करो।
जी
पहली शर्त यह है कि दूसरी शादी।
माफ कीजिए, एक मिनट, माफ कीजिए।
क्या है, इरादा बदल गया? वक्त नहीं है, साइन करो जावेद हाशिम।
हामिद को फोन करो जल्दी।
बोलिए।
सुनो हामिद।
अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब।
तुम फौरन हाशिम के पास पहुंचो, हाशिम से कहो फौरन मुझको फोन करे। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए।
मेरा पैसा खाते हो, टेलीफोन का जवाब नहीं देते।
हमारे फोन का जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दिया करो ना।
आइंदा इसे याद रखना है कि हमारे फोन का जवाब देना है, समझा कि नहीं?
आप कौन है, आप क्या कह रहे हैं?
हमारे पैसे टकार गया है, हम इसे ढूंढ रहे थे।
क्या मतलब
रोटी है?
इनके हाथ क्यों बांध रही हैं मोहतरमा?
बराए मेहरबानी इनके हाथ खोल दें।
नहीं हो सकता, जब तक डॉक्टर रफत इजाजत नहीं थे हम इनके हाथ नहीं खोल सकते।
नाज़नीन तुम जाओ, डॉक्टर से बात करो तुम।
डॉक्टर रफत कहाँ है? आप लोगों ने हमारी बहन के हाथ क्यों बांध दिए?
उनके लिए किया है, कहीं नुकसान ना पहुंचा दे अपने को।
प्लीज इस वक्त के हाथ खोल सकती हैं?
हम उनके हाथ खोल सकते हैं प्लीज?
सिस्टर आप इनके हाथ खोल दीजिए।
मैं खुद खोल लूंगी अगर आप इजाजत दें।
ठीक है।
आपने बताया कि वो मुझसे कोई बात करना चाह रही है ना? रुको, मैं तुम्हारा सर ऊपर करती हूँ, थोड़ा ठहरो। कैसी हो? एक मिनट ठहरो। हाँ नहीं, मैं जानती हूँ।
तुमने उन्हें क्यों उतार दिया? तुम तो कह रही थी कि उन्हें खाने पर बुलाना चाहती हो।
परेशान मत हो, रात के खाने पे बुला लेंगे। हाशिम, इस आदमी को कहां से पता था कि हम लोग उस ऑफिस में हैं?
बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहा है, यानी जब से आया हूं तभी से। मैं किसी ना किसी तरह बचकर निकल जाता हूं, लेकिन पीछा नहीं छोड़ रहा है।
क्या उसे तुम्हारे घर का भी पता है?
नहीं मालूम।
जरूर उसे तुम्हारे घर का भी पता है। कल सुबह जब से तुम घर से निकले हो और अभी ऑफिस तक ये तुम्हारा पीछा कर रहा था।
हाँ बिल्कुल, ये ऑफिस से ही पीछे था। नहीं, यानी घर से ऑफिस तक आ गया था। ये आखिर कैसा आदमी है, कितना घटिया आदमी है ये।
तुम पर उस आदमी का कितना कर्जा होगा?
नहीं मालूम।
नहीं पता?
नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जानता। ये पता नहीं कितना हो गया है, ये पता नहीं कि ये वैसा कर्जा है जो हर थोड़े दिन के बाद बढ़ जाता है। कुछ
सूद पे, समझ गई, सूद पे।
हाँ हाँ, वही सूद पे लिया था।
ठीक है, इस वक्त तो तुम्हारे पास पैसे, उसे फोन करो, जाकर उसे उसके पैसे लौटा दो।
हामिद, तुमने ढूंढ लिया उन्हें?
हाँ।
नासर सर, हामिद ने उन्हें ढूंढ लिया। एक मिनट रुको।
हेलो, तुम इससे पहले मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे?
अरे यार, तुम सफर से कब वापस आए? हाँ, जब से मैं आया हूं बस तुमको ही हर जगह तलाश कर रहा हूं। मैंने बहुत फोन किया तुमको, लेकिन हमेशा तुम्हारा फोन बंद रहता था। तुमने अपना मोबाइल नंबर शायद बदल लिया। ये तुम्हारा नया नंबर होगा ना जिससे फोन किया?
मेरा पुराना दोस्त है।
देखो यार, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ,